તારીખ 30/1/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 6
તો પ્રગટ દેખને મેં તો આતા હૈ
इसने गुण की सिद्धि कर लिया है, सिद्ध करते जाते हैं, कैसा गुण है ही उसमें। पहले से लिए थोड़ा आज हमने चर्चा ले विषय में सवार ने चर्चा तो चालू रख सो પહેલે ચલી ગયા દ્રવ દ્રષ્ટિ પ્રકાશમાં તો શું છે કે ચર્ચા ના બોલ જ છે, આ તો ગ્રંથ છે, પુસ્તક જ છે, ગ્રંથ તો બહુ સારો છે, એમાં કઈ સવાલ નથી। ચર્ચા નું વાંચન બે પ્રકાર તો જુદે જુદે છે, દ્રષ્ટિ પ્રકાશ માં તો શું છે કે ચર્ચા નો બોલ તમે સામે રાખો ને એના ઉપર તમે ચર્ચા કરો, વાંચન માં એક સાથે કન્ટિન્યુ બોલવાનું પણ બે કલાક થઈ જાય ને, એટલે ચર્ચા રાખવાનું કારણ એ છે। એટલે વિચાર્યું તો એમ તમે ઘરે વાંચો ન સમજાય એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી, એટલે શું છે કે તમને પણ થોડુંક સમજવા માટેનો એક પ્રયાસ ચાલે, એકલા સાંભળવામાં એ પ્રયાસ નથી રહેતો, ગુરુદેવની કૃપાથી સિદ્ધાંતો ઘણા સમજવામાં આવે છે, ઘણા પ્રસિદ્ધ થયા છે, સમજાયા છે આપણા મુમુક્ષુ સમાજમાં, એટલે પણ એક શૌક્ષણિક સમજણને કારણે જિજ્ઞાસા ઘટી જાય છે, એ એક પ્રકાર પણ ઉત્પન્ન થઈ ગયો, એ એક થોડું નુકસાનનું કારણ છે। चिदानंद अपनी गुप्त शक्ति को व्यक्त रूप से भाव, जिससे वह व्यक्त हो, तो ये एक भावना पूर्वक परिणमन को प्रकट करने की कार्य पद्धति है। गुप्त शक्ति को शक्ति रूप से नहीं भा करके व्यक्त रूप से भाव, इससे वो व्यक्त हो, तो इस प्रकार भावना भाने से उसकी व्यक्ति हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो वो कैसे, कि जैसे एक दृष्टांत है कि हम कोई गए स्टेशन पर या कोई बड़ा मकान हो और यहाँ सार्वजनिक आवागमन सभी समाज के सभी लोगों का हो, तो वहाँ कोई बम रखता है, रख देता है और उसके लिए किसी को जानकारी मिल जाती है और बात जाहिर की जाती है कि इधर एक बम पड़ा है, बिल्डिंग में से सब लोग हट जाओ, निकल जाओ, वरना मिल जाओगे सब। तो वहां दिखने में तो एक थोड़ा एक कोई चीज दिखने में आती है दूर से कि कोई ब्राउन कलर का कोई चीज पड़ा है, पत्थर पड़ा है या कोई बम पड़ा है या कोई बॉल पड़ा है, क्या पड़ा है, लेकिन वो फूटा नहीं है, बम फूटा, बम्बार्डिंग नहीं हुआ है, फिर भी प्रकृति में क्या होता है कि जैसे वो अभी फूट जाएगा, तो वो गुप्त है, उसकी जो नुकसानी है, जो भी प्रकट अवस्था है, वो तो गुप्त है, उधर में शक्ति रूप है, लेकिन देखने में शक्ति रूप नहीं देखते हैं, देखने में व्यक्ति रूप देखते हैं। भय जो होता है तो उसकी व्यक्ति का भय होता है कि ऐसा होगा तो सब मर जाएंगे, तो सारा बिल्डिंग खत्म हो जाएगा। तो ऐसे शक्ति को व्यक्ति रूप भाने से परिणाम पर इसकी असर पहुंचती है। दृष्टांत में क्या व्यू पॉइंट क्या है कि कोई भी शक्ति रूप पदार्थ को व्यक्ति रूप भाने से उसकी जो असर है वो परिणाम पर सिद्धि आती है। इसलिए आत्मा जो शक्ति रूप पदार्थ है, गुप्त शक्तियों है, उसको व्यक्ति रूप भाने से अवस्था व्यक्त हो जाती है, उसकी असर आ जाती है, शक्ति जैसी है वैसी असर आ जाती है, ये कहने का इधर अभिप्राय है कि शक्ति को व्यक्ति रूप में भाव, सारा समय सार की ये पद्धति है। शक्ति का वर्णन, शक्ति का शुद्ध परिणमन कैसा होगा, उस प्रकार से उसकी परिभाषा शक्ति की है कि शक्ति की व्यक्ति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, और ऐसा अपना आत्मा है ऐसा भाने से इसकी असर सिद्धि परिणाम पर जैसी शक्ति है वैसी असर आ जाएगी। तो वो प्रकट हो गया, ऐसा कहेंगे चिदानंद अपनी गुप्त शक्ति को, गुप्त शुद्ध शक्ति को व्यक्त रूप से भावो, जिससे वह व्यक्त हो, ऐसा भाने से वो व्यक्त, ऐसा परिणमन व्यक्त हो जाएगा। तो ये परिणमन को व्यक्त करने की, शक्ति के परिणमन को व्यक्त करने की ये विधि है, कार्य पद्धति। उस प्रकार से ज्ञानी है वो अपने स्वरूप को भाते हैं और प्रगट परिणमन को प्रकट करते हैं, उस प्रकार से करते हैं। यही बात है, वो प्रतिति में प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं तो क्या है कि प्रकट रूप प्रत्यक्ष करते हैं ऐसा। ठीक है, किंतु परोक्ष ज्ञान में निरावरण की प्रतीति कर कर के आनंद बढ़ाए हैं ऐसा। मेरे दर्शन ज्ञान का प्रकाश मेरे प्रवेश में से उठता है तो क्षेत्र में व्याप्त व्यापक बना लिया तो सीधा द्रव का ग्रहण होता है। मेरे दर्शन ज्ञान का प्रकाश मैंने पर्याय है वो, लेकिन प्रदेश में से उठता है तो सारी वस्तु का ग्रहण हो गया उसमें व्याप्त व्यापक रूप से। ऐसा अवलोकन से जाने मात्र विचार की मर्यादा में न रखे, ये बात ब्रैकेट में खोल दिया है कि ऐसा अवलोकन से जाने मात्र विचार की मर्यादा में न रखे। तो ये बात सिर्फ विचार की नहीं है, अपने को देखना है और देखने से वो उसका असर आता है, क्योंकि देखने में वस्तु प्रत्यक्ष है और विचार में वस्तु परोक्ष है। तो परोक्ष चीज की असर नहीं आती, प्रत्यक्ष की असर आती है, परोक्ष चीज की असर नहीं आती। कोई भी व्यक्ति का कितना भी फोटो देखो और व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखो कितना फर्क पड़ता है कितना फर्क पड़ता है। आप देखेंगे तो कोई एक एंगल से देखेंगे, पर फोटो आपको बहुत अलग अलग एंगल से देखने को मिलेगा, फिर भी प्रत्यक्ष है उसमें जो रस आएगा वो परोक्ष में रस नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी देखो, टीवी में देखो, स्क्रीन पर देखो तो भी नहीं आएगा। क्रिकेट देखने को वहां क्यों जाते हैं, वहां तो आप जहां बैठे हो एक ही एंगल से आपको दिखने को मिलेगा, इसमें जो स्लो स्पीड है वो भी दिखने को नहीं मिलेगा। और टीवी में तो 8 कैमरा हो तो 8 एंगल से बताएंगे कि दिखा जो को भी बात बनी है उसको तो अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, उसको लो स्पीड में भी दिखाएंगे, फिर भी पैसा खर्च करके वहां क्यों देखने को बैठता है, टाइम आना जाना पैसा का खर्च करना, कि उसकी असर ज्यादा आती है। प्रत्यक्ष में असर ज्यादा आती है तो देखने की असर भी ज्यादा से ज्यादा लेनी है, ज्यादा रस लेना है उसमें, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष का बहुत फर्क है। यह आत्मा है, आत्मा प्रत्यक्ष है, प्रकट है, क्यों के स्वसंवेदन है वो अनुभव में आता है, अपना वेदन अपने अनुभव में आता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष है। विशेष ज्ञान गौण कर दिया, कर दिया विशेष ज्ञान को गौण करना है। जहां जहां ज्ञान किसका ज्ञान वो बात नहीं है, जहां जहां ज्ञान तो किसका ज्ञान, ज्ञान गे का विषय वाला नहीं लिया, इसका मतलब सामान्य ज्ञान दिया। एक समय सार के 69 गाथा है, उसमें वो बात है कि मैंपना अनुभव में कहां आता है, अपनी मौजूदगी, अपनी विद्यमानता कहां अनुभव में आती है, राग में या ज्ञान में। दो प्रकार के भाव अनुभव गोचर हो रहे हैं, जीव को राग का भी अनुभव हो रहा है कि मुझे ऐसा राग हुआ, और ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है कि मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ। पता तो चलता कि नहीं चलता, खबर तो पड़े सके नहीं कि मैंने ज्ञान था इसे नहीं, खबर तो पड़े सके नहीं, क्या खबर नहीं पड़ती। मैं जानता हूँ ऐसा तो मालूम पड़ता है, और मैं राग करता हूँ ऐसा भी मालूम पड़ता है। अब जो तलाश करनी है अवलोकन से, वो उतनी करनी है कि मेरी विद्यमानता कहाँ है, मेरी विद्यमानता अनुभव गोचर कहाँ होती है, राग में या ज्ञान में। उतना तलाश करके अनुभव से वो देख करके निश्चय करना है कि मेरी विद्यमानता, मेरी मौजूदगी, मेरा अस्तित्व, शास्त्र भाषा में उसको कहेंगे अस्तित्व। अस्तित्व कैसे मालूम पड़ता है, हूं पद से। मैं गुजराती में आपने हूं कहिए, हिंदी में मैं पना कहाँ आता है, अथवा मैं पना कहाँ आता है, राग में या ज्ञान में। राग में आएगा मैं पना मिथ्यात्व अवस्था में, वो एक भूल है, गलती है, तो ज्ञान में मैं पना आएगा नहीं। वास्तव में अपना ही विद्यमानता ज्ञान में है, राग तो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, तो बारीकाई से देखने से भूल निकल जाती है। चीज को बारीकाई से देखने से जैसी है वैसी दिखने में आएगी। तो अपनत्व जो है, मैंपना है, अस्तित्व है, वो ज्ञान में मालूम पड़ेगा। ज्ञान में अस्तित्व मालूम पड़ेगा तो उसमें मालूम पड़ने के दो प्रधान मुद्दा है, फैक्टर है, एक व्यापकता और वेदकता। उनसे वो पक्का हो जाएगा कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, और ज्ञान स्वरूप होने से मेरे में जो रागादि है उससे जब मैं भिन्न हूं तो मैं सर्व से भिन्न हूं। क्या जब मैं राग से भी भिन्न हूं तो मैं सबसे भिन्न हूं, किसी से भी मेरा ज्ञान का कोई भी प्रकार से अभिन्नता वाला संबंध नहीं है। तो मैं सर्व से सर्वथा भिन्न हूं, केवल चैतन्य स्वरूप हूं, और केवल चैतन्य में आकुलता नहीं होने से अतिंद्रिय सुख स्वरूप हूं, और जो अतिंद्रिय सुख है वो चिंतन में नहीं आ सकता है होने से अतिंद्रिय अचिंत्य सुख स्वरूप हूं। लेकिन अचिंत्य होने पर भी ज्ञान में तो है जैसा है वैसा। अचिंत्य का मतलब वो नहीं है कि वो ज्ञान में नहीं समझ में आता, लेकिन चिंतन गोचर, विकल्प गोचर, वो विकल्प भी पकड़ में वो नहीं आने वाला है, ज्ञान में अवश्य उसका स्वरूप जानने में आता है। और ऐसा जो मेरा स्वरूप है वो वेदन स्वरूप होने से, अनुभूति स्वरूप है,
केवल अनुभूति स्वरूप होने से, वेदन स्वरूप होने से, वेदन तो निर्विकल्प ही होता है, निर्विकल्प स्वरूप हो। और जब विकल्प में आकुलता होती है तो निर्विकल्प में मैं परम शांत स्वरूप हूं। ये सब जो विशेषताएं हैं, ऐसा मैं अभेद, सभी विशेषताओं से विशिष्ट ऐसा अभेद मैं हूं, ऐसा तन्मय हो करके मैं मेरा अनुभव करता हूं, ऐसा लेना है। ये अवलोकन युक्त भावना है, स्वरूप के अवलोकन वाली भावना है, विकल्प वाली नहीं, अवलोकन वाली भावना है। और ये सब विशेषताएं ज्ञान मात्र में समाप्त हो जाती है, मैं ज्ञान मात्र हूं, मात्र ज्ञान हूं, उसमें ये सब समाप्त हो जाती है। ऐसा अपने को देखने का, सन्मुखता का प्रयास चलना चाहिए, मुमुक्षु की भूमिका में स्वरूप सन्मुखता का ऐसा प्रयास चलना चाहिए। वांचन श्रवण ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, सुगानी जी ने लिया है, वांचन श्रवण तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, और चिंतमन मनन वो भी बहुत स्थूल है इसके आगे, इससे आगे जा करके जैसा अपना स्वरूप है वैसा उसको अवलोकन में लेकर के उसकी सन्मुखता का प्रयास चलना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और ये नियमबद्ध बात है कि जिसको ऐसा स्वरूप सन्मुख का पुरुषार्थ चले उसको दर्शन मोह का अनुभाग बहुत कटता है। कितना? बहुत कटता है, इतना कभी नहीं कटा है, उतना कट जाता है। तो इसलिए उनको तो अनुभव होगा होगा और होगा ही, लेकिन अनुभव सन्मुखता का पुरुषार्थ वाले को होता है, दूसरा किसी को नहीं होता है। कोई भी करोड़ प्रयत्न करे, लाख प्रयत्न करे, करोड़ उपाय करे, अनुभव नहीं होगा, ये बात है। जिस प्रकार वृक्ष पर बैठा हुआ बंदर वृक्ष का एक पत्ता खिरने पर रोता है, बंदर को कल्पना हो जाती है कि मेरे पर जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो, एक पत्ता गिरा है तो रोने लगता है। उसी प्रकार यह भी अपने शरीर का एक अंग भी कम हो जाए, वहां भिन्न भिन्न प्रकार से रोता है, एक यह मेरे और मैं इनका, इस प्रकार झूठे ही ऐसे जड़ों की सेवा में सुख मानता, शरीर का एक अंग खराब होने से उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्या हो गया, मैं लाचार हो गया, मैं दीन हो गया, मैं पराधीन हो गया, वास्तव में आत्मा में से कुछ गया
नहीं।
कल्पना मात्र दुख है, ऐसा कहते हैं, जो भी सांसारिक प्रतिकूलताएं हैं वो कल्पना मात्र, दुख की कल्पना मात्र है। आत्मा में कुछ भी इससे दुख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्ता तो उनको स्पर्श भी किया बंदर को, लेकिन प्रतिकूलताएं तो आत्मा को स्पर्श भी नहीं करती। ऐसी बात है, कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। जैसे हमारे भी कोई मुमुक्षु बीमार होते हैं, बीमार होते हैं तो उनके साता पूछने के लिए जाते हैं, तो वहां तो ऐसी बात चलनी चाहिए कि अच्छा हुआ निवृत्ति मिल गई, क्या जो बीमार नहीं होता तो ऑफिस जाना पड़ता, काम धंधा पर जाना पड़ता, और जहां भी जो भी जिसको भी जैसा उदय है वहां उपयोग लगाना पड़ता है, बिना उपयोग लगाए तो कोई बाहर का काम करते नहीं। अब तो निवृत्ति मिल गई, कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको वो करना है, लेटे रहो, आप बैठे रहो या सोते रहो, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। तो अपना काम करने के लिए तो अनुकूलता हो गई या प्रतिकूलता हो गई, क्या हुआ?
ज्ञानी कहते हैं अगर उसको जिंदगी भर का उसके साथ कपड़ा हो जाए।
वास्तव में मुमुक्षु के लिए तो ये प्रतिकूलता नहीं है किंतु अनुकूलता है। वो तो क्यों कि उपयोग वेद ज्ञान में बराबर लगा सकता है, उपयोग जो है वो बराबर वेद ज्ञान में लगा सकता है, क्योंकि उसके सिर पे कोई उपाधि थोपने वाला नहीं है क्या, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो करना है, वो करना है, वो काम रह, अभी कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है तो अपना कार्य तो बराबर कर सकते हैं।
तो कौन-कौन पूछवा नहीं
आया। कितनी दिनता हो गई, दूसरे लोग मुझे पूछने को आवे तो मेरा कोई स्टेटस, ज्यादा लोग आता है तो मेरा स्टेटस ज्यादा है, बहुत लोग मेरे स्वास्थ्य का खबर अंतर पूछते हैं। दीनता, दीनता में अपनी महत्ता मानता है, कितनी विपरीतता है, ये तो दीनता है। आशा धरते हैं कि वो आवे तो अच्छा, वो आवे तो अच्छा, वो आवे तो अच्छा, वो आशा रखते हैं ना दूसरे से, ये तो दीनता है, प्रत्यक्ष दीनता है। अनंत काल में मनुष्यपना बहुत कम मिलता है, एक बार मिलता है, अनंत काल में एक बार मिलता है। मनुष्यत्व का मूल्य बहुत है, मनुष्य आयु का इतना मूल्य है कि एक समय की कीमत रत्न चिंतामणि से अधिक बताइए, चक्रवर्ती का वैभव से भी अधिक बताइए। वास्तव में तो ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, पैसों से समय की कीमत आंक करना वो कोई राइट टर्म तो नहीं है, लेकिन लोग पैसों के सिवा समझते नहीं इसलिए कहते हैं।
वास्तव में तो कोई बराबरी करने की चीज नहीं है। दूसरा तो आत्मार्थी मुमुक्षु को तो ऐसा लेना है कि मैं अपने आत्महित के लिए ही मेरा समय अधिक से अधिक व्यतीत करूं, देहार्थ में मुझे मेरा समय बिगाड़ना नहीं है, शरीर की अनुकूलता के लिए मेरा समय मुझे खराब नहीं करना है, आत्मार्थ के लिए ही मुझे मेरा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज मिलने वाली नहीं है। तो उसका जो बाह्य दृष्टि है उसमें जोर टूट जाए और वो वापिस मुड़ करके पाछो वाली ने कोई आत्मार्थ से अपना काम करे। बहुत जरूरत है, सत्संग सबसे अधिक बलवान चीज है और संयोग की जो भी विचार चिंता चलती है ये सीधा ही आत्मगुण को उत्पन्न करने में रोधक है। चिंता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आत्मगुण रोधक है। कल की तो चिंता नहीं करनी है, एक घंटे बाद की भी चिंता नहीं।
उनकी तो जिस उम्र में उसने आत्मानुभव किया उस उम्र में तो पूरी प्रतिकूलता, समझे आप जो प्रतिकूलता को कहते हैं वो, तो शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था, मतलब डेथ बेड पर थे, मृत्यु शैया पर, मृत्यु के आगे 15-17 दिन पहले अनुभव किया है, तो इतने कमजोर थे, अशक्ति जिसको बोलते हैं शारीरिक, लेकिन आत्मा में अशक्ति नहीं थी, आत्मा का पुरुषार्थ तो तीव्रता से चलता था, बहुत अच्छा चलता था, बढ़िया पुरुषार्थ चलता था। अम्बालाल भाई ने यह कहा कि अपने स्वरूप की सावधानी रखनी है, कहीं उपयोग आपको नहीं लगाना है, तो क्या मैं दूसरा और जगह उपयोग लगाऊंगा क्या, लगा सकता हूँ क्या, लगाऊं क्या मैं, ये बात तुमको बतानी पड़ेगी मुझे, क्या हो ही नहीं सकता, और जगह आत्मा में ही बराबर हूँ। कितना जोर से आत्मा की पुरुषार्थ का जोर कितना है, अनुभव हुआ तो केवल ज्ञान लेने की बात करने लगे, अनुभव तो हो गया अभी तो केवल ज्ञान लूंगा मैं, मृत्यु से आप ऐसी बात करते हैं और सब चिंता को छोड़ दी थी। आगे लिखा है वो 2-3 महीने पहले जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि इधर जाने का विचार है और इस वक्त के समागम में बहुत लाभ होने वाला है, ऐसा बोल दिया है। मां सुदर्शन परमार्थ दृष्टि पुरुष को अवश्य करने योग्य ऐसा समागम के लाभ में यह विकल्प रूप अंतराय कर्तव्य नहीं। वो डूंगर भाई के लिए लिखा है कि बार बार हम आपके पास आएंगे तो लोग हमारी चर्चा करेंगे, वो तो बार बार रायचंद भाई के पास चले जाते हैं, तो कहते हैं कि परमार्थ दृष्टि पुरुष को अवश्य करने योग्य ऐसा जो सत्समागम उसके लाभ में ऐसे विकल्प रूप अंतराय कर्तव्य नहीं है। इस वक्त के मैंने इस प्रसंग के समागम में विशेष लाभ होने योग्य है, ऐसा लिखा है, एक वचन लिख दिया है। इधर जाने के लिए फिलहाल विचार रखते हैं, आप तैयार रहना, ऐसा करके लिखा है। तैयार रहना, मानसिक तैयारी कर लेना, इधर जाने का हमारा विचार है, ऐसा करके। और इस वक्त के समागम में विशेष रूप से लाभ होने लायक है। उनकी योग्यता देख ली थी, पक गई थी योग्यता कि अभी जो लाभ है बहुत अच्छा होने वाला है। हम महाराज भाई को ऐसी सूचना देते हैं, जिस प्रकार दूसरे मुमुक्षुओं के चित्त में और अंग में निर्मल भाव की वृद्धि होवे, उसी प्रकार तुमको प्रवर्तन करना, वर्तन करना वो कर्तव्य है। देखो क्या लिखा, दूसरे मुमुक्षुओं के भाव अच्छा हो जाए ऐसा तुम्हारा प्रवर्तन होना चाहिए। नियमित श्रवण कराना और आरंभ परिग्रह के स्वरूप का सम्यक प्रकार से देखने से निवृत्ति और निर्मलता के कितने प्रतिबंधक है वो बात चित्त में दृढ़ हो गए, वैसे ज्ञान कथा परस्पर होवे, ऐसा कर्तव्य है। दूसरे मुमुक्षु के चित्त में भाव की वृद्धि हो, निर्मलता की वृद्धि हो, ऐसा प्रवर्तन आपस में करना। निर्मलता मैंने पवित्रता, निर्मलता मैंने अंग में निर्मलता, चित्त में और अंग में निर्मलता और भाव की वृद्धि हो, उस प्रकार से प्रवर्तन करना योग्य है। एक ऐसा है कि कोई दूसरे का आचरण अच्छा होता है, इनके भाव निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, तो दूसरे मुमुक्षु इनके चाहक है, इसलिए उनको ऐसे भाव की का आविर्भाव होता है। अच्छे व्यक्ति को देख करके भाव भी अच्छा होता है ऐसा, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा बनने को, इसलिए मार्गदर्शक बहुत देते। इन दिनों में सांसारिक प्रवृत्ति पर काफी निषेध किया है, आरंभ और परिग्रह के विषय में बहुत लिखते हैं, वो आत्मभावना को बाध करने वाला है, आत्म अनुभव में आने के लिए अंतराय करने वाला है, और बहुत से पाप परिणाम के हेतुभूत है, आत्मलाभ के विशेष घातक है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रवृत्ति के विषय में 737 में बहुत प्रयोग किया है। और लोक संज्ञा में तो लोकमान्य धर्म श्रद्धावान पण आ जाता है क्या? बाहर के प्रसंग की मोटाई तो है ही, क्या जो जो बात लोक में, जो जो वस्तु लोक में महत्ता जिसकी है, ऐसा शोभायमान ग्रह आदि, अलंकार आदि परिग्रह और लोक दृष्टि का विचिक्षण पड़ा, मैंने बहुत बुद्धिमान आदमी है, लोक दृष्टि का विचिक्षण पड़ा, मैं बहुत बुद्धि वाला आदमी है, बहुत इतना काम करता है, इतना बहुत जगह काम करता है, अधिक से अधिक ज्यादा अपना बुद्धि का प्रयोग करके बहुत से काम को सलटाता है, ऐसा विचिक्षण पड़ा, लोक दृष्टि का विचिक्षण पड़ा और लोकमान्य श्रद्धावान पड़ा, लोग मान कर भी बहुत धर्म की श्रद्धा बहुत है, उसको धार्मिक श्रद्धा बहुत है, ऐसा लोकमान्य धर्म श्रद्धावान पड़ा, लोग तो मानते हैं हमको, ये सब प्रत्यक्ष जहर है क्या? लोगों का सर्टिफिकेट लेना वो प्रत्यक्ष जहर खाने का बराबर है, लोग क्या कहेंगे कि जिसको जो कहना है सो कहो, अपना मतलब अपना आत्महित से है, दूसरों से नहीं है, ऐसा पक्षी तो स्वच्छंद आगे जाए तो लोगों को अच्छा रखने के लिए, लोगों को बुरा नहीं लगे, लोगों को अच्छा लगे, ऐसा अच्छा लगाने के लिए वो देव गुरु शास्त्र सतपुरुष के विरुद्ध भी जाएगा, क्योंकि लोगों को अच्छा लगाना है। हाँ, ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, अपने उनके साथ चलो अपराध तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं देव गुरु शास्त्र का सतपुरुष का अपराध हो जाएगा, क्योंकि लोगों को राजी रखना है यार, लोग हमारा विरोध कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, डरते हैं, कोई डरते हैं, कोई लोभ से, कोई डर से, किसी न किसी प्रकार से, ये सब लोग संगने का उसंगना का परिणाम है, उसमें स्वच्छंद हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कैसे स्वच्छंद हो जाता है। तो करना करवाना अनुमोदना सब एक ही प्रकार है, उसमें अंतर नहीं है। लौकिक में और धार्मिक क्षेत्र में दोनों जगह स्टेटस को पर क्रॉस लगा देना, एक दोनों क्षेत्र में खराब बोल देंगे, वो हमारा अच्छा नहीं बोलेंगे, हमारे लिए अभी अच्छा है, खराब बोलेंगे तो तेरे लिए अच्छा है, अगर तेरे लिए अच्छा बोलेगा तो तुझे मान चढ़ जाएगा, अपने जीव को संबोधन करना है कि तेरा खराब बोलता है ना, अच्छा है, मान चढ़ने का तो प्रसंग नहीं रहा। चलो ये खराब बोलता है तो मान चढ़ने का तो प्रसंग नहीं रहा, मान चल जाता अच्छा बोलता तो ठीक है, अपन तो जैसे है वैसे है, लेकिन मान चढ़ने का एक निमित्त तो नहीं। सरलता से जैसा लेना है वैसा ले ले, और क्या उल्टा क्यों ले मैं? ज्यादा लोग मान देने लगे और जीव मान से बचे, ये बात थोड़ी मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन है वो बात। मैंने बहुत अंतर सावधानी हो गए तो बच सकता है, अंतर सावधानी नहीं हो तो बच नहीं सकता। यदि श्री गुरु के कहने से शिवपुरी को संभाले तो वहां का स्वयं चेतन राजा अविनाशी राज्य करे। जहां चेतनावस्थी है तीन लोक में आन वर्ते और भव का भ्रमण मिटकर फिर जड़ में ना आए। आनंद घन को पाकर सदा शाश्वत सुख का भोक्ता हो। तीन लोक में आनवर्ते मैंने ज्ञान तो तीन लोक में लोकालोक का हो जाएगा ना, तो फिर तो ज्ञान बार तो कोई चीज बनेगी नहीं, वो आन आन, आन हो गई, ज्ञान के आन में आ गई सब बात। ऐसा गुरु की महिमा बहुत करते हैं, अनुभव प्रकाश में गुरु की महिमा बहुत करते हैं। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि के पहले पद में वो बात लिया है, समझाए मुते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। सदगुरु अकेले नहीं कहा, सदगुरु को भगवंत कहा। ये बहुत नैसर्गिक है, बहुत नेचुरल है वो, क्योंकि उनको लगता है कि अनंत जन्म मरण में कितना दुखी में हो जाता अगर मेरा स्वरूप उसने नहीं बताया तो मैं कितना दुखी हो जाता अनंत काल तक। ऐसे बताने वाले भगवान पुरुष ही होते हैं, ऐसे बताने वाले तो भगवान पुरुष ही होते हैं, उनको दूसरा आवे ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत नेचुरल है वो। भावना वृद्धि लाभ को देखना है, कितना लाभ होने वाला है, कितना लाभ होने वाला है, बस सहज भावना बढ़ जाएगी। एक मृत्यु के मुख में आ गया आदमी को कोई बचा लेता है तो वो क्या कहता है, मेरा तो भगवान है, मैं मर जाता उसने बचा लिया है। ये तो अनंत जन्म मरण से बचाने वाला है। और फिर भी निष्प्रय, बाहर में तो डॉक्टर वही धरो तो कोई अपना चार्ज भी लेता है कि भाई ऑपरेशन का 3 लाख खर्चा हो जाएगा, नहीं हो तो किसी का कर्ज कर लो बचना हो तो, जिंदा रहेंगे रहोगे तो दे देंगे, ये तो निष्प्रय है। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर इसके प्रति कैसा भाव है। ये बात है,
तो
गुप्त और प्रगट ये अवस्था भेद है जो पहले लिया है ना बार में, ये यहाँ से लिया है। गुप्त और प्रकट ये अवस्था भेद है, दोनों अवस्थाओं में स्वरूप ज्यों का त्यों है, ऐसा श्रद्धा भाव सुख का मूल है। आत्मा कुछ बिगड़ा नहीं है, जैसे नट ने पशु का वेश धारण किया, उससे वह मनुष्यपने को छोड़कर बाहर नहीं गया है। पशु का वेश धारण न करे तो मनुष्य ही है, वैसे ही भ्रम से पर का ममत्व न करे तो देह का स्वांग धारण न करे तो चिदानंद ज्यों का त्यों रहे। जैसे एक डिब्बे में रत्न रखा है, इससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, रत्न डिब्बे रूप नहीं हो गया, डिब्बे से उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, वह गुप्त है। ढक्कन दूर करके निकाले तो वह व्यक्त है, वैसे ही शरीर में छुपा हुआ आत्मा है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, वह गुप्त है। कर्म रहित तो होने पर प्रकट होता है अवस्था में, लेकिन ये गुप्त और प्रकट ये अवस्था भेद है। दोनों अवस्थाओं में स्वरूप ज्यों का त्यों है, ऐसा श्रद्धा का विषय तो ऐसा है कि वो तो अनादि अनंत स्वरूप ज्यों का त्यों जैसा का वैसा है, यही सुख का मूल है, ऐसा श्रद्धा भाव सुख का मूल है। जिसकी दृष्टि पदार्थ शुद्धि पर नहीं है और कर्म दृष्टि से अशुद्ध अवलोके अपने को, मूल पदार्थ जैसा है उस पर जिसकी दृष्टि नहीं है और कर्म दृष्टि से जैसा बार में कर्मजनित अशुद्ध अवस्था है ऐसा अवलोके, मैंने ऐसा अनुभव करे तो वह शुद्धता को प्राप्त नहीं होगा, उनको अवस्था में मलिनता ही मलिनता बनी रहेगी। जैसी दृष्टि से देखे वैसा फल होता है। मयूर मुकरंद पाषाण है, मयूर मुकरंद पाषाण है, उसमें सब मोर ही मोर भासित होते हैं, पाषाण की ओर न देखने से मोर भासते हैं और पदार्थ की ओर देखने से पदार्थ ही है, मोर नहीं है। उसी प्रकार पर में देखने वाले को पर ही भासित होता है, निज की ओर देखे तो पर भासित नहीं होता है, क्योंकि निज में पर है ही नहीं, निज में निज को देखने वाले को पर दिखता ही नहीं निज में, और पर को देखता है तो एकांत पर दिखता है, स्वरूप नहीं दिखता है, भूलता है अपने स्वरूप को, ये पर नहीं दिखता है, वो यहां से निकला है, ये अध्यात्म का विषय है। ये निज में निज को देखे तो पर भाषित ही नहीं होता, क्योंकि निज में पर का अस्तित्व नहीं है, निज में तो निज का अस्तित्व है, तो निज में निज को देखने से अपना अस्तित्व दिखने में आता है, पर का अस्तित्व वहां है नहीं तो पर दिखने में नहीं आता, निज ही है। इससे सुखकारी निज दृष्टि छोड़कर दुख रूप पर में दृष्टि नहीं देना, ऐसा। ये अस्तित्व की बात है। वहां जैसे मयूर मुकरंद पाषाण का दृष्टांत लिया ना, जैसे वो दर्पण जैसा पाषाण होता है, उसमें मोर दिखते हैं, बहुत मोर दिखते हैं मयूर मुकरंद पाषाण में, क्या है कि पाषाण का पहलू बहुत है, हर पहलू में मोर दिखते हैं, तो मोर देखने से पाषाण को भूल जाता है, वहां तो मोर है ही नहीं, वहां तो पाषाण है, और जो पाषाण को देखते हैं वो मोर को नहीं देखते, मोर दिखने पर भी गौण हो जाता है।
ऐसा इसमें अपने में देखो, एकांत पर को देखोगे तो स्व को भूल जाएंगे। जैसे छात्र अवस्था में एकांत पर को देखता है स्व को भूलता है, और निज में निज को देखता है तो निज में पर नहीं है तो पर स्वरूप ही दिखता है उसमें, तो अपना एकाकार स्वरूप दिखता है, पर दिखता ही नहीं है, संबंध टूट जाए। उसी को असंगता कहते हैं, सारे सभी पदार्थों का संबंध छूटना, वही भाव में असंगता है। और ये असंगता के लिए सारा उपदेश है, असंगता को बढ़ाने के लिए, उसको केलवनी करने के लिए सारा उपदेश इसके लिए है। सत्संग भी असंगता के लिए है, ऐसी बात है। बहुत शैली बहुत सुंदर है उनका, अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी ने बहुत बातें ली।
मातनो जय गुरुदेव जय।